इशाया छठा बाब नबुवत की दावत।
उज़िया बादशाह की वफात के वर्ष में मैंने खुदावंद को बुलंद फराज तख्त पर बैठे देखा और उसके लबास के दामन ने हैकल को भर दिया। उसके पास सराफीन खड़े थे, हर एक के छह छह पर थे। दो से वो अपने मुंह को छुपाता और दो से अपने पांव को ढांपता और दो से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 रब्बुल अफवाज, तमाम जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने की आवाज से दहलीज की बुनियादें हिल गईं और घर धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूं और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। तब सराफीन में से एक उड़कर मेरे पास आया और उसके हाथ में एक अंगारा था जो उसने दस्तपनाह से मजबा पर से उठाया था, और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे होंठों को छुआ, तेरी बदी दूर की गई और तेरी खता का कफारा हुआ। और मैंने खुदावंद की आवाज सुनी और उसने कहा कि मैं किसको भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा। तो मैंने कहा, देख, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। तो उसने कहा, जा और इस उम्मत से कह कि तुम सुनते हुए सुनो पर समझो नहीं, और देखते हुए देखो पर पहचानो नहीं। तू इस उम्मत के दिल को मोटा कर और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर, ऐसा ना हो कि वो अपनी आंखों से पहचाने और अपने कानों से सुने और अपने दिल से समझकर रजू लाएं और शिफा पाएं। तब मैंने कहा, ऐ खुदावंद, ये कब तक? तो उसने कहा, तब तक कि शहर उजाड़ हों और उनमें कोई रहने वाला ना हो और घर बाशिंदे के बगैर हों और जमीन वीरान बेआबान छोड़ी जाए। बस खुदावंद इन आदमियों को दूर कर देगा और इस मुल्क के बीच में बड़ा खला होगा, और अगर उसमें दसवां हिस्सा भी बाकी रहे तो ये भी हलाक हो जाने के लिए होगा, जिस तरह बुत्तम या बलूत जब काट डाला जाए तो ठूंठ बाकी रहता है और उसके ठूंठ से मुकद्दस बीज उगेगा।